नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमियों को सशक्त बनाने वाली मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर इसे मौन क्रांति बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखने के फैसले को अवैध और गलत करार दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत तथा दुबई के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में 3 और राजनीतिक संगठनों ने अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क धमकियों के बावजूद एशियाई बाजारों में उछाल, बीएसई सेंसेक्स में 1200 अंकों से अधिक की वृद्धि। चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति की 50% अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी को ब्लैकमेल करने की रणनीति बताया। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स आज शाम लखनऊ सुपर जायंट से खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना को उद्यमियों को सशक्त बनाने पर इसे मौन क्रांति बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ अपने निवास पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपने उद्यमिता कौशल दिखाने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की 70% लाभार्थी महिलाएं हैं।
सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं, और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है।
श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना तथा रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बनने की क्षमता प्रदान करना है।
रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में एक शॉट लेते थे, अब दो ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है।
बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए।
अभी मेरी एज 23 इयर्स है, तो मेरे पास अभी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और टाइम भी है। तो ये सही समय होता है। यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है।
आई एम गोपी कृष्णन, एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑफ मुद्रा लोन फ्रॉम केरला। माई बिजनेस कंटिन्यूज टू थ्राइव, ब्रिंगिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस टू हाउसहोल्ड्स एंड ऑफिसेस व्हाइल क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज।
एक पेट हॉबीज से कैसा कि मैं एंटरप्रेन्योर बन, और मेरा जो बिजनेस वेंचर है उसका नाम है केनाइन वर्ल्ड। मुद्रा लोन मिलने के बाद हम लोगों ने काफी सारे फैसिलिटीज स्टार्ट किए, जैसे कि पेट बोर्डिंग फैसिलिटीज स्टार्ट किए। हम लोग जो भी पेट पेरेंट्स हैं, अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं सर, तो हमारे पास वो छोड़ के जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी प्रदान किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2015 में शुरू हुई मुद्रा योजना ने आज 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। इसमें शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर के लिए 5 लाख रुपए और तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण शामिल है। इस योजना ने हाशिए पर पड़े समूहों को भी उद्यमिता के जरिए अपनी आजीविका चलाने में सक्षम बनाकर उनमें आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मुद्रा योजना में फंसे हुए ऋण एनपीए की दर इस तरह की योजना के मामले में दुनिया में सबसे कम है। अंग्रेजी दैनिक से साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत उपलब्ध कराए गए केवल 3.5% ऋण ही एनपीए में बदले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया में सबसे कम डिफॉल्ट रेट है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पुर्तगाल यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति पुर्तगाल की असेंबली, चैम्पलिम फाउंडेशन और राधा कृष्ण मंदिर भी जाएंगी। राष्ट्रपति अल्मेडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति पुर्तगाल में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगी। इसके साथ ही उनकी विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुछ भारतीय शोधकर्ताओं से भी मुलाकात की संभावना है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, लिस्बन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल लिस्बन में राष्ट्रपति मार्सिलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पुर्तगाल की यात्रा के बाद राष्ट्रपति स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के निमंत्रण पर वहां जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज श्रीनगर राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर में जारी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बैठक में उपस्थित थे। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। गृहमंत्री जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित करना अवैध और गलत था, जो राज्य विधानसभा द्वारा फिर से अपनाए गए थे। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यपाल के लिए विकल्प नहीं था कि वो राष्ट्रपति के लिए एक विधेयक को आरक्षित करे जिसे राज्य सरकार ने फिर से विधानसभा से पास होने के बाद प्रस्तुत किया था। एक बार जब विधेयकों को राज्यपाल के पास फिर से प्रस्तुत किया गया तो उन्हें मंजूरी देनी चाहिए थी, क्योंकि वे सहमति प्राप्त माने जाते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करना चाहिए और बिना किसी उचित कारण के मंजूरी नहीं रोकनी चाहिए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को तमिलनाडु और भारत के सभी राज्य सरकारों के लिए ऐतिहासिक विजय करार दिया। तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्णय राज्य के विधायी स्वायत्तता के प्रति उसके स्थिति को सही ठहराता है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये मुकदमे विश्वविद्यालय के पास 400 एकड़ जमीन पर पेड़ कटाई के विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए थे। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पुलिस को छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 और राजनीतिक संगठनों ने अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है। इनमें जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के संविधान में लोगों के भरोसे का एक मजबूत प्रतिबिंब है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकजुट और मजबूत भारत का सपना और मजबूत हुआ है, क्योंकि अब तक 11 संगठनों ने खुद को अलगाववाद से अलग कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री शाह ने कल शाम कश्मीर पहुंचने पर पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं मुजामिल के आवास का दौरा किया, जो कोकरनाग में आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। गृहमंत्री आज श्रीनगर में प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा इसराइल के कृषि मंत्री अवी दिख्तेर ने आज नई दिल्ली में कृषि में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय साझेदारी आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि दोनों देश कृषि, नवाचार, जल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छोटे किसानों के लिए खेती को अधिक लाभदायक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि बैठक के दौरान आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों के बारे में सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले बीजों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे बढ़ते तापमान के बावजूद अधिक उपज सुनिश्चित हो सके।
नई रिसर्च होती है, वो रिसर्च हमारे किसानों तक जल्दी पहुंचे और एक्सटेंशन वर्कर के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके हम कैसे ऐसे बीज का निर्माण कर सकते हैं जो बढ़ते हुए तापमान में भी क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके उत्पादन बढ़ा सके।
दुबई के युवराज और संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम आज भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दुबई के युवराज के रूप में भारत के उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए दोपहर भोज का आयोजन किया। वे आज शाम मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां वे दोनों देशों के शीर्ष व्यापारियों के साथ गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
एशिया के ज्यादातर शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुले। जापान का निकेई मजबूती के साथ 6.41% ऊपर खुला, जबकि टॉपिक्स में आरंभिक कारोबार में 6.81% की तेजी देखी गई। व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए फोन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सहमति के बाद बाजार में सकारात्मक रूप देखा गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 50% शुल्क लगाने की चेतावनी के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिका की ब्लैकमेल रणनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच चीन के स्वामित्व वाली कंपनियां बाजारों का समर्थन करने के लिए आगे आ रही हैं। वहीं वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय बाजार आज सुबह के कारोबार में बढ़त के साथ खुले।
घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर बाद 2% की वृद्धि देखी गई। विभिन्न क्षेत्रों में खरीदारी से शेयर बाजार को समर्थन मिला। बॉम्बे शेयर बाजार का सूचकांक 1,506 अंक बढ़कर 74,643 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 467 अंक के वृद्धि के साथ 22,628 पर था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमरीकी शुल्क के जवाब में सावधानी पूर्वक विश्लेषण का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पुरी ने कहा कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से पहले शुल्क संबंधी घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शुल्क लगाने के कई उद्देश्य होते हैं और उनके अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इनके बारे में अत्यधिक सतर्कता और समुचित समझदारी से विचार करने की आवश्यकता है। यूक्रेन इस सप्ताह अमेरिका में वार्ताकारों को भेजने की योजना बना रहा है, जिसे वाशिंगटन को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज भंडार तक पहुंच प्रदान करने वाले प्रस्तावित सौदे पर चर्चा की जा सके। ये दल वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की यात्रा करेगा, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में अमरीकी समर्थन जारी रखने के लिए शर्त रखी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन आज केंद्रीय विदेश और पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मुकाबला कोलकाता में दोपहर बाद 3:30 से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमियों को सशक्त बनाने वाली मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर इसे मौन क्रांति बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए सुरक्षित रखने के फैसले को अवैध करार दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत तथा दुबई के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में 3 और राजनीतिक संगठनों ने अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क धमकियों के बावजूद एशियाई बाजारों में उछाल, सेंसेक्स में 1,200 अंकों से अधिक की वृद्धि। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।